प्यारे साथियों नमस्कार। 11 फरवरी 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एकेडमी की जो अक्टूबर में क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए 5 साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। मैं अपने इन सभी 5 साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इन 5 नौजवान दोस्तों के नाम हैं विकास चौधरी, आप यमुना नगर से हैं, विजय साहू रांची से हैं, संत कुमार चौधरी इलाहाबाद से हैं, अतुल अप्पा राव कामले थाने से और अविनाश साखरे बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो विकास, विजय, संत कुमार, अतुल और अविनाश, मैं एकेडमी फॉर एक्सीलेंस की अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सब आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए ताकि आप सब यहां से ज्यादा लेकर जा सकें। मित्रों, इससे पहले कि मैं आज अपनी बात शुरू करूं, एक सूचना है, और खासकर ये जो मेरे दिल्ली के जो प्रिय श्रोता हैं और दिल्ली के आसपास के एरिया के जो प्रिय श्रोता हैं उनके लिए सूचना ये है कि 14 तारीख को, अभी 14 फरवरी को ही मुझे दिल्ली में एक शादी में शामिल होने के लिए पहुंचना है। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है और प्रोग्राम इस तरीके से है कि 14 तारीख की दोपहर में मैं किसी समय प्रगति मैदान में पहुंचूंगा। आप लोगों को मालूम होगा प्रगति मैदान तो बहुत फेमस जगह है जो आईटीओ के पास में है। वहां विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन हो रहा है, मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा और इसके बाद फिर मैं वहीं रहूंगा। तो जितने भी प्रिय श्रोता हैं वो वहां आमंत्रित हैं। 3 बजे के आसपास या 3 बजे ही कह लीजिए, मैं अपने समय को इस तरह से मैनेज करूंगा कि 3 बजे के बाद 1 घंटे का समय मैं फ्री रखूंगा। इस दौरान मेरे सबसे पहले मैं वे स्टूडेंट जो पिछले साल के अक्टूबर नवंबर की क्लासेस में, एकेडमी की जो क्लासेस लगी थी उसमें जो दिल्ली और आसपास के जो स्टूडेंट आए थे, आधे घंटे मैं उनसे डिस्कस करना चाहूंगा कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनकी और आगे क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में उनकी जरूरतों को शामिल किया जा सके। तो आधे घंटे तक मैं अक्टूबर की क्लासेस में जो स्टूडेंट आए हुए थे उनसे एक्सक्लूसिवली बात करना चाहूंगा। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि एक्सक्लूसिवली बात करना चाहूंगा का मतलब ये नहीं है कि अगर दूसरे स्टूडेंट वहां मौजूद होंगे तो उन्हें वहां से दूर जाने को कह दिया जाएगा, बातचीत वो भी बड़े आराम से सुन सकते हैं। इसके बाद 3:30 बजे से 4 बजे तक मैं अपने उन सभी स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा जो इस साल के मार्च और अक्टूबर की क्लासेस में आ रहे हैं और साथ ही वे स्टूडेंट जो इस ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे हैं या वे भी स्टूडेंट जो आगे सुनना चाह रहे हैं अभी नहीं सुन रहे हैं, तो आप सभी का वहां स्वागत है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मुलाकात अपनी होगी शाम या के लिए दोपहर 3 बजे के बाद प्रगति मैदान में, और जो लोकेशन होगी, जो जगह होगी वो होगी, आप देखेंगे कि प्रगति मैदान में जहां बुक्स के बड़े बड़े जो वो लगे हुए हैं, बड़े बड़े हॉल में जो किताबों के प्रदर्शनियां लगी होती हैं, वहीं पर बीच में एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है जहां भोजन मिलता है, एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, छोटे छोटे को छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट से सटा हुआ ही एक ग्रास ग्राउंड है, मतलब घास का मैदान है। हम लोग वहीं मुलाकात करेंगे। 14 फरवरी की डेट है और इसके लिए मेरे जो 2 स्टूडेंट हैं, एक मिस्टर हिटलर हैं और दूसरे विकी हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हो तो मैं उन्हें इस प्रोग्राम के लिए लीडर नियुक्त करता हूं कि वो थोड़ा सा वहां पहले पहुंच जाएं, और पहुंचने के बाद जो स्टूडेंट उन्हें लगे कि ये स्टूडेंट हैं और शायद इसी पर्पस से आए होंगे, उन्हें वहां एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और यदि हिटलर और विकी, जिनके मैं नाम ले रहा हूं, वे किसी वजह से उस दिन अवेलेबल नहीं हो या इसके लिए इच्छुक नहीं हो तो वो मेल के द्वारा मुझे बता सकते हैं ताकि मैं ये दायित्व फिर किसी दूसरे को दे सकूं। इसी के साथ ही एक और सूचना है कि फरीदाबाद से जो राजेंद्र लड्ढा जी हैं और उनकी बेटी हैं प्रीति लड्ढा, जो क्लास में आई भी थी। राजेंद्र जी, आपने कहा था कि आप स्पेशली मिलना चाहते हैं और उसके लिए आप भोपाल भी आना चाहते थे, तो मैंने कहा था कि बहुत संभव है कि बुक फेयर में हम लोगों की मुलाकात हो। तो आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप 1 बजे के आसपास मुझे फोन कर लेंगे। हो सकता है कि 2 बजे के आसपास लंच पर हमारी मुलाकात हो जाए, हो सकता है, नहीं मैं प्लान ही इस तरीके से करूंगा कि 2 बजे के आसपास हम लंच टेबल पर आपस में बातचीत कर सके। आप अपने साथ प्रीति को भी बिल्कुल ला सकते हैं, वो भी बातचीत में शामिल हो सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा क्योंकि अभी वहां का जो स्ट्रक्चर है वर्किंग का और प्रोग्राम्स का मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम नहीं है, तो बेहतर होगा कि 12 बजे के आसपास आप मुझे फोन कर लें, फिर प्रोग्राम फिक्स किया जा सकता है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी सूचना थी और मुझे विश्वास है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो मेरे प्रिय श्रोता हैं उनसे मिलकर मुझे बेहद खुशी होगी, मैं आप लोगों की समस्याओं को जान सकूंगा और आप वहां उपस्थित होंगे, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को मुझे स्पष्ट रूप से आमने सामने बताने के लिए, ताकि मैं इस ऑडियो गाइडेंस को और भी अधिक आप लोगों के अनुकूल बना सकूं। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने मोटिवेशनल पार्ट पर, और इस मोटिवेशनल पार्ट में हम लोग पिछले 2-3 दिनों से इमोशंस वर्सेस थॉट्स की बात कर रहे हैं, वर्सेस तो नहीं कहना चाहिए, इमोशंस एंड थॉट्स की बात हम कर रहे हैं। मैं इसे आज थोड़ा दूसरे तरीके से आप लोगों को बताना चाहूंगा और उसके पीछे रीजन यह है कि कल न चाहते हुए भी हम लोगों ने हवाई ज्यादा फिल्म देखी। न चाहते हुए मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस फिल्म के जो रिव्यू आ रहे थे वो बहुत पुअर आ रहे थे, सभी अखबार लगभग लगभग 2 स्टार 2.5 स्टार इस फिल्म को दे रहे थे और सब ये कह रहे थे कि बहुत अच्छी फिल्म नहीं बनी है। लेकिन जब मैंने मिथुन चक्रवर्ती का जो इसमें एक्टर है और बहुत गजब की भूमिका उन्होंने की है, उनका एक इंटरव्यू सुना और जिसमें उन्होंने कहा कि भले ही ये फिल्म अच्छी बनी है या नहीं बनी है, आप जो भी चाहें इसे कहें, लेकिन हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, उससे प्रेरित होकर के फिर हम लोग कल ये फिल्म देखने गए। और दोस्तों, सच में अगर मैंने ये फिल्म नहीं देखी होती हम लोगों ने, तो हमने बहुत कुछ मिस किया होता। पता नहीं, क्या क्रिटिक्स का अपना एक तरीका है, वो फिल्मों को अलग अलग कोणों से देखते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। 157 मिनट की इस फिल्म में कोई क्षण ऐसा नहीं आया, अगर मैं शुरू के थोड़े से हिस्से को छोड़ दूं, जब आप ऊब महसूस करेंगे और जब आपको लगेगा कि यार थोड़ी सी झपकी ही ले लो। बहुत खूबसूरत फिल्म है दोस्तों, मैं आप सब को सलाह दूंगा एक तरह से, ये मेरी केवल रिकमेंडेशन है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप इस फिल्म को देखें, क्योंकि इस फिल्म में आपको थोड़ा सा इतिहास भी मिलेगा, थोड़ा सा भारतीय दर्शन या भारतीय फिलॉसफी भी मिलेगी, भारत की मेधा भी मिलेगी और सन 1900 आसपास का भारतीय समाज भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से मैं आपको ये फिल्म देखने की सिफारिश कर रहा हूं आपसे, दोस्तों मैंने महसूस किया है, जो मेरे पास फीडबैक भी आते हैं और लगातार आते हैं और पर्सनली मुलाकात में भी जो स्टूडेंट बताते हैं कि उन्हें मोटिवेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कुछ दिनों तक वे तरोताजा रहते हैं और इसके बाद फिर कमजोर पड़ने लगते हैं, और इसीलिए मैं इमोशंस को थॉट में बदलने की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इमोशंस को थॉट में बदल दिया जाए, इमोशंस बहुत जल्दी आते हैं और गायब होते चले जाते हैं, वो अस्थायी होता है, लेकिन थॉट्स उतने अस्थायी नहीं होते, वो बड़े मजबूत होते हैं। तो इस फिल्म में आपको ये प्रोसेस दिखाई देगी, इसकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो प्रक्रिया दिखाई देगी। अभी मैं इसकी रिकमेंडेशन इसलिए कह रहा हूं कि आपको मालूम है कि बड़े शहरों में तो अब फिल्में ज्यादा समय तक चल नहीं पाती हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह अधिकतम 3 सप्ताह तक का उनका जीवन होता है, इससे पहले कि ये फिल्म कहीं उतर न जाए। आप लोगों को चाहिए आप ये फिल्म देख लें और ये मत सोचिएगा कि आप इसे कंप्यूटर पर या आप इसे घर में टीवी स्क्रीन पर देख लेंगे, ये फिल्म ऐसी, इसकी फोटोग्राफी ऐसी है कि आप इसको सही मायने में केवल थिएटर में ही आप इसे एंजॉय कर सकेंगे। मित्रों, इसमें आपको जो मैंने कहा कि इमोशंस को हाउ टू कन्वर्ट योर इमोशंस इनटू थॉट, वो कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ बहुत अच्छे सूत्र मिलेंगे और नो डाउट कि मोटिवेशन तो बहुत अधिक मिलेगा। इसमें आपको मैं 2-3 वो एंगल बता रहा हूं जिसके आधार पर आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, खासकर इमोशंस और थॉट के संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूं। पहली बात है प्रेम। हर भारतीय फिल्म में प्रेम होता ही होता है, नहीं अगर वास्तव में न हो तो उसमें डाल दिया जाता। बायोपिक फिल्मों में आप देखते हैं, खैर अच्छी बात है, कोई बुरी बात भी नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो हीरो है जो वाकई में बहुत टैलेंटेड है, जिसने एक तरह से हवाई जहाज इजाद की हवाई जहाज बनाया, मतलब राइट बंधुओं ने शायद 1903 के आसपास हवाई जहाज बनाया था। भारत उससे 8 साल पहले 1895 में हवाई जहाज बना चुका था, लेकिन चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत की यह उपलब्धि भारतीयों को मालूम हो, क्योंकि अगर भारतीयों को यह उपलब्धि मालूम हो जाएगी तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और अंग्रेजों के खिलाफ फिर से एक तरह से आक्रोश बढ़ने लगेगा, आंदोलन तनपने लगेगा। तो उन्होंने जानबूझकर इस तथ्य को दबाया, उसी का खुलासा खासकर इस हवाई ज्यादा फिल्म में किया गया है। तो बहुत टैलेंटेड हीरो रहता है जो शास्त्री जी की मदद से, शास्त्री जी बेसिकली हवाई जहाज का इजाद करते हैं, फिर पूरी तरह से उसको सफल बनाता है। वो एक प्रेम में पड़ता है और प्रेम में पड़ने के बाद जब थोड़ा असफलता मिलती है तो बहुत बुरी तरह से निराश हताश हो जाता है। फिर शास्त्री जी उसे लेकर के आते हैं और फिर से उसे काम से लगाते हैं। प्रेम जब उनकी प्रेमिका मिलती है तो वो उसको प्रोत्साहित करती है और एक वाक्य कहती है कि मैंने तो ये सुना है कि प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने औकात से बहुत ज्यादा कर जाता है, तुमको भी करना है। मित्रों, ये बहुत जबरदस्त संदेश है। तो आपको वहां दिखाई देगा कि प्रेम में असफल व्यक्ति, हताश निराश व्यक्ति किस तरह से अपने को फिर से खड़ा करता है, पुनर्जीवित करता है और इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है, यानी कि किस तरह से वो अपने प्रेम के इमोशंस को अपने स्ट्रांग थॉट में कन्वर्ट करता है और जैसे ही वो स्ट्रांग थॉट में कन्वर्ट होती है वो चीज वो एक्शन में आ जाती है। इसके बाद आप देखेंगे मित्रों, चूंकि ये बहुत टैलेंटेड है तो घर परिवार इन सब से एक तरह से उसे तिरस्कृत ही होना पड़ता है। उनके पिता जमींदार हैं और नहीं चाहते कि उनका बेटा इन फालतू के कामों में लगा रहे, तो उसे घर से इतना अपमान सहना पड़ता है कि उसके पिता घर से भी निकाल देते हैं। फिर आप इमोशंस का एक पार्ट देखेंगे कि कैसे जो आपका अपमान किया जा रहा है, जो आपको अपमानित कर रहा है, आप उस अपमान को कैसे अपने लिए एक सकारात्मक रूप में लेते हैं और कैसे अपने उस पिता को, जिस पिता ने आपको निकाल दिया था, बाद में मिलने पर आप कहते हैं कि मैं ये आपकी वजह से ही हो पाया हूं, क्योंकि आप जिस तरह से जिद्दी हैं, जितने जिद्दी हैं वही उसी तरह का जिद्दी मैं भी हूं, तो मेरी ये उपलब्धि बेसिकली आपकी उपलब्धि है। तो जिस पिता से उसे सच पूछिए तो बिल्कुल विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए था या बिल्कुल कट जाना चाहिए था, उसी पिता के प्रति वो क्या भावना रखता है, इसका मतलब है कि उसने जो अपमान के घूंट पिए थे उसको किस तरह से उसने थॉट में कन्वर्ट कर दिया, एक पॉजिटिव विचार के रूप में परिवर्तित कर दिया। पितरों, एक बहुत खूबसूरत वाक्य है जो बाद में अपनी आने वाली पीढ़ी को, एक छोटे से बच्चे को यही नायक समझाता है, जिसने प्रेम को विचारों में बदला, जिसने अपमान को विचारों में बदला, उसने कहा कि देखो रोना मत कर, क्योंकि रोने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी रोने को प्रश्रय नहीं दिया, मैं कभी नहीं रोया, मुझे स्कूल से निकाला गया नहीं रोया, घर से निकाला गया नहीं रोया, प्रेम में फेल हुआ नहीं रोया, पता नहीं इतने इतने बातें करता, बस केवल एक बार रोया था जब शास्त्री जी की मौत हुई थी, उनकी मृत्यु पर रोया था, लेकिन मैं हमेशा हंसता ही रहा हूं। तो यहां भी आप फिर पूरी फिल्म में देखिए कि इस व्यक्ति ने कैसे अपने रोने को हंसने में कन्वर्ट किया है। ये तीन एंगल दोस्तों मैं बता रहा हूं और आप तीन एंगल से जब आप फिल्म को देखेंगे तो आपको वो प्रोसेस समझ में आएगी कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो दूसरी बातें होंगी वो डेफिनेटली मैं आपको अगले ऑडियो गाइडेंस में उसकी चर्चा करूंगा। और अंत में एक बात और जो बहुत जरूरी है और मैं समझता हूं कि जो यंग जनरेशन है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है और वो ये है कि जो चूजे घोंसले में पला करते हैं वो कभी उड़ नहीं पाते, जो सुख सुविधाओं में पलते हैं, जो रिस्क नहीं लेते, जो संघर्ष नहीं करते, वो फिर बहुत अधिक ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। तो मित्रों, आज के इस ओपनिंग रिमार्क्स के रूप में इतना ही। अब मैं आता हूं अपने अगले चरण पर और वो है AIR न्यूज का चरण। मित्रों, अब मैं थोड़ा सा आज से अपने इस ऑडियो में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं और परिवर्तन ये है कि अब मैं एक ही टॉपिक को लेकर के पूरी तरह से विश्लेषण करने की बजाय मैं चाहूंगा कि सभी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इससे आप में विश्लेषण करने की क्षमता तो आ जाएगी जो मैं अभी फिलहाल कर रहा हूं, लेकिन जो चयन करने की सुविधा है वो आपकी थोड़ी सी कम होगी कि कोई कौन सी खबर या अखबार की कौन सी क्लिपिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और यदि है तो क्यों है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे यह भी महसूस हो रहा है पिछले कुछ समय से कि जो अंग्रेजी की क्लिपिंग्स हैं वो अंग्रेजी की क्लिपिंग्स को जो बिल्कुल हिंदी का स्टूडेंट है वो शायद उतने अच्छे तरीके से न समझ पाए, न समझने के कारण वो उन्हें पढ़ना भी पसंद नहीं करता है और मजबूरी में पढ़ता भी है तो उन्हें उसका कुछ सार समझ में आने में काफी दिक्कत हो रही होगी, और या हो सकता है कि उन्हें सार समझ में आए भी नहीं। तो इसलिए आज से मैं अब इसमें फिर से थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, और ये वो परिवर्तन ये कि मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं उधर उस ओर इशारा करके ज्यादातर चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा, और बीच बीच में फिर मैं विश्लेषण भी दिया करूंगा। तो ये परिवर्तन मैं आज से करने जा रहा हूं। तो उसी के तहत AIR न्यूज की मैं चर्चा कर रहा हूं कि आपने सुना कि दिल्ली में चुनाव हो गए हैं और लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं कि बिल्कुल अविश्वसनीय अकल्पनीय सफलता आप पार्टी को मिली है 70 में से 67 सीट्स, और बीजेपी जो अभी तक इतनी स्ट्रांग पार्टी थी लोकसभा में जिसने एक तरह से अकल्पनीय सफलता ही प्राप्त की थी, और अभी जो राज्यसभा जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जो इतनी बड़ी सफलता पा रही है, एक तरह से बहुत ही बुरी हार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मित्रों, ये एक छोटी सी घटना है और इसके बारे में चूंकि एक छोटी सी घटना नहीं है, घटना तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये न्यूज थी और इसके बारे में चूंकि बहुत ताजी घटना है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी तो आप लोगों ने अखबारों में भी आज पढ़ा होगा, चैनल्स पर भी डिस्कशन सुने होंगे, लेख भी लिखे जाएंगे, एडिटोरियल्स भी आएंगे, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो सब चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं एक दो बातों की तरफ आपका इशारा करना चाहूंगा जो सिविल सर्विस से रिलेटेड है। नंबर एक, मित्रों आपको ये तथ्य मेरी समझ से आपके काम का हो सकता है कि आप पार्टी को जो टोटल वोट पड़े हैं उसका 54% मिला है, तो ये जो 54% है ये सही मायने में बहुमत को शो करता है, है ना, 50% से एबव। अभी तक होता ये था कि किसी को 30% भी मिल गया, अगर दूसरे को कम मिला तो कोई बात नहीं, 30% वाला सरकार बनाएगा, मतलब टोटल तो बहुमत चाहिए ही, संख्या में तो बहुमत चाहिए ही, लेकिन जो वोट का प्रतिशत होता था वो जरूरी नहीं कि 50% मिले। तो एक तो मुझे ये बात बहुत अपीलिंग लगी कि आप पार्टी को 54% मत मिले हैं, मतलब सही मायने में वो एक तरह से बहुमत का प्रतिनिधित्व कर रही है। दूसरा दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये शो कर रहा है कि जो भारतीय लोकतंत्र है या मतदाता है कह लीजिए, अब कितना मेच्योर हो गया, कितना प्रौढ़ हो गया है, उसकी सोचने समझने की क्षमता शायद बहुत अच्छी हो गई है और वो लोकतंत्र को सही नजरिए से देखने लगी है। जैसे आप देखिए कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वहां 7 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, यानी कि दिल्ली वालों ने सोचा कि नहीं, जब देश की राजनीति की बात आती है तो ये पार्टी बेहतर है, लेकिन जब उनके अपने जीवन या अपने राज्य से के संचालन करने की बात आई तब उन्होंने उसी भारतीय जनता पार्टी को जिसको 100% एक्सेप्ट किया था ऑलमोस्ट 95% नकार दिया और आपको ऑलमोस्ट 95% एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि अब जनता बहुत अच्छे तरीके से समझने लगी है कि राष्ट्रीय मसले क्या हैं और स्थानीय हमारी जरूरतें क्या हैं। मित्रों, जो विकेंद्रीकरण है जिसका नीति आयोग में भी चर्चा हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की चर्चा हो रही है, अब भारतीय लोकतंत्र धीरे धीरे उधर जा रहा है और जैसे जितना जितना भारतीय लोकतंत्र मेच्योर होता चला जाएगा उस उतना ही ये जो लोकल एस्पिरेशंस है, मतलब कह लीजिए कि जो एक स्थानीय आकांक्षाएं हैं वो बहुत तेजी से उभरेंगी और दिल्ली के चुनाव एक तरह से पूरे देश की जो अर्बन जो आकांक्षाएं हैं, जो शहरी इच्छाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही है कि हमको बड़ी बड़ी चीजों से मतलब नहीं है, हमारे यहां बिजली और पानी की सप्लाई ठीक हो, उनकी दरें ठीक हो, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, पुलिस वाले हमें तंग न करें, हमें तो इन सब चीजों की जरूरत है क्योंकि आप पार्टी ने जब 49 दिन तक सत्ता में रही थी तब इसी पर काम किया था और अभी भी अपने चुनावी प्रचार के दौरान वो लगातार इन्हीं सब मुद्दों की बात करती रही है। तो ये दिखाता है कि लोग वास्तव में क्या चाहते हैं और चूंकि दिल्ली को माना जाता है कि वो एक तरह से पूरे देश का एक तरह से प्रतीक भी है, वो प्रतिनिधित्व भी करती है, तो इस हिसाब से इसे भारतीय जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। तो मित्रों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगा, खासकर सिविल सर्विस की दृष्टि से, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा एडिटोरियल भी लिखा है जिसकी मैंने चर्चा की है, ये आप देख लेंगे। इसका टाइटल ही इन्होंने रखा है कि अर्बन इंसरेक्शंस, मतलब एक जो शहरी जो जरूरतें होती हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसकी जीत है ये, या उसका उसका प्रतिबिंब है कह लीजिए। इसी को लेकर के मित्रों इकोनॉमिक टाइम्स ने भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें इन्होंने एक नई बात कही है जो मैं अपने हिंदी के खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा, ताकि उनका जो फैक्ट बेस है वो बहुत मजबूत बन सके। इन्होंने दिया कि आप पार्टी की जो आज सफलता है, लगभग यही सफलता 1950-60 के दशक में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी को मिली थी। लगभग इन्हीं सब चीजों को लेकर के केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया था और वो चुनाव में जीती भी और लंबे समय तक शासन में रही भी। और अपने उस शासन के दौरान कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक काम किया था वो ये था कि वहां के लोगों को एम्पावर किया, अपने लोगों को का उसने सशक्तिकरण किया, और एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में उसने सबसे ज्यादा काम किया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने। और आप देखते हैं कि इसी वजह से केरल राज्य आज बिल्कुल डिफरेंट है, वहां आपको 100% एजुकेशन लिटरेसी मिल रही है और काफी उन्नत राज्य हो गया है, तो वहां के बहुत से लोग बाहर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा ये है, एक जो टी के अरुण है जो इस लेख लिखा है ये, कि ये आप पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी उसी तरीके से अपने लोगों का सशक्तिकरण करें और उनकी जो रियल जरूरतें हैं उनको पूरा करें, ये उसके लिए मस्ट होगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो दिया है वो है कि आप पार्टी भारतीय राजनीति में एक नई शुरुआत कर सकती है, और वो शुरुआत है खासकर जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है उसको ट्रांसपेरेंट बनाकर, ट्रांसपेरेंसी में ला करके आप पार्टी शुरू से कर रही है, जो भी उसको चंदा मिलता है वो तुरंत अपने नेट पे डाल देती है, अपनी वेबसाइट पर डाल देती है, ताकि पता लग जाए कि ये चंदा कहां से मिला, ये पैसा कहां से आया। मित्रों, आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, खासकर भारत में आर्थिक सुधार को लेकर के, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को लेकर के, राजनीतिक सुधारों को लेकर के, तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे बड़ा जोर इस बात पर दिया जाता है कि राजनीतिक पार्टियों को ये जो फंड मिलता है, जो चंदा के रूप में पैसा दिया जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, बताइए कि ये पैसा आपको कहां से मिला, और राजनीतिक पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होती डेफिनेटली, ताकि वो उस चंदे को छिपा सकें। चंदा देने वाले फिर अपना राजनीतिक दलों का इस्तेमाल अपने ढंग से करते हैं और एक तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म बनता चला जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने खूब चर्चा की है। तो इसमें लेख में इकोनॉमिक टाइम्स के ये बताया गया है कि आप पार्टी अगर इस तरीके से काम करती रही और अपने चंदे का चंदे के सोर्स को ट्रांसपेरेंट करती रही, तो डेफिनेटली इसका दबाव दूसरी पार्टियों पर तो पड़ेगा, और जब दूसरी पार्टियों पर दबाव पड़ेगा तो वो भी शायद ऐसा करने लगे और भारतीय राजनीति में एक जबरदस्त परिवर्तन आ जाए। तो इस तरह से उन्होंने लिखा कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, 5 साल तक उन्हें सत्ता में रहना है और उन्हें अपनी इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो बिहार की राजनीति को लेकर के है, इस पर हम लोग लगातार लंबे समय से बात करते आ रहे हैं, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। तीसरी खबर के रूप में मैं कहूंगा जो हमारे नेशनल गेम्स चल रहे हैं, इसके बारे में आप सुन ही रहे हैं कि केरल में गेम्स हो रहे हैं और जो हमारी सेना है वो पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। जब समाप्त हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो न्यूज के रूप में मित्रों इतनी ही बातें हैं। अब मैं आता हूं अखबारों की कतरनों पर। दैनिक जागरण में डिजिटल इंडिया पर एक लेख है और ये खासकर रविशंकर प्रसाद जी का है जो इस मंत्रालय के मिनिस्टर भी हैं। इनका एक आर्टिकल मैंने बहुत पहले करीब 3-4 दिन पहले आपको प्रोवाइड किया था, वो शायद इंग्लिश में था, ये हिंदी में है। और डिजिटल इंडिया जो सब्जेक्ट है, मैं समझता हूं कि साइंस के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इससे कैसे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब को लेकर के आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए और ये आर्टिकल आपको इसमें मदद करेगा। दैनिक जागरण का आर्टिकल है, अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसे देख लेंगे। मित्रों, इसी तरह से इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट है कि हाउ टू स्टॉप ब्लैक मनी जनरेशन। आप देख रहे हैं कि काले धन को लेकर के बात होने लगी है, काले धन के विदेशों में जमा किए गए काले धन के खाता धारकों के कुछ नाम मिले हैं। इसमें इन्होंने जो इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है कि इसको आप कैसे रोकेंगे काले धन को जनरेट होने में, तो इसमें इन्होंने कुछ तथ्य बताए हैं, जिसमें एक उन्होंने कहा है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को शुरू कर दीजिए। किसी के ऊपर जब टैक्स फिक्स किया जाता है तो उसको लेकर के मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, तो इसको इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस को आप ठीक कीजिए। फिर उन्होंने कहा है कि जो पैसा पार्टियों को मिलता है उसको आप ट्रांसपेरेंट बना दीजिए, उसको ठीक कीजिए। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके जो जटिल नियम हैं उन जटिल नियमों को आप कम कर दीजिए, क्योंकि जब नियम जटिल होंगे तो लोग करप्शन की तरफ जाएंगे, भ्रष्टाचार की तरफ जाएंगे, लोगों को पैसा देकर के अपना काम कराएंगे और ये जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसा आएगा बट में जब जो ब्लैक मनी कोई शो तो नहीं करेगा कि हम यहां से हमने ये कमाई की है। फिर उन्होंने कहा है कि जो रियल इस्टेट है, खासकर जो जमीनों के और मकानों के लेन देन होते हैं, इसके जो रूल्स रेगुलेशन है आप इसको ठीक कर दीजिए। अगर ये सब हो जाता है तो काफी कुछ ब्लैक मनी पर नियंत्रण हो जाएगा। ये इकोनॉमिक टाइम्स की ओपिनियन है, ये भी मैं डाल रहा हूं, नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेगा, अंडरलाइन किया हुआ है। मित्रों, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एडिटोरियल लिखा है, खासकर जिनको अभी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जो मराठी लेखक हैं नेमाडे जी, उन्होंने अभी जो एक वक्तव्य दिया है, खासकर बालचंद्र जी ने, कि अंग्रेजी को बंद किया जाना चाहिए, उसको लेकर के एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि अंग्रेजी अब विश्व स्तर की भाषा हो गई है और भारत में इसका काफी योगदान रहा है। चीन की तुलना में भारत सर्विसेज सेक्टर में जो आगे बढ़ रहा है वो इसलिए क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजी जानते हैं, चीन के लोग अंग्रेजी नहीं जानते। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी से हमारा नुकसान ही हो रहा है, इससे हमारा फायदा भी हो रहा है, तो इसके बारे में बहुत सही तरीके से, संतुलित तरीके से सोचा जाना चाहिए। यह टाइम्स ऑफ इंडिया का ओपिनियन है और मैं समझता हूं कि चूंकि एक भाषा का मामला है, भाषा संस्कृति विकास शिक्षा कई चीजों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए ऐसे राइटिंग में ये घटना आपके काम आ सकती है, तो ये नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेगा। मित्रों, एक एडिटोरियल कमेंट है और एडिटोरियल आर्टिकल भी है राष्ट्रीय सहारा का, ये दोनों राष्ट्रीय सहारा के हैं और खासकर नीति आयोग की जो अभी पहली बैठक हुई थी उसको लेकर के उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं। इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिसकी मैं आपसे अलग से चर्चा करूं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, लेकिन इन्होंने जो मूल प्रश्न उठाया है वो ये है कि अब नीति आयोग को राज्यों के विकास के बारे में सोचना चाहिए और राज्यों का विकास सबसे ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि जो कोष का आवंटन होता है वो राज्यों के लिए कितना अधिक हो रहा है। आपको मालूम है कि जो इनकम टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी है, इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो केंद्र सरकार वसूल करती है और उसमें फिर राज्यों की हिस्सेदारी होती है। हिस्सेदारी कितनी हो इसका निर्धारण किया जाता है फाइनेंस कमीशन द्वारा, जिसे हम वित्त आयोग कहते हैं, वो रिकमेंड करती है। तो अभी माना जा रहा है कि उनको दिया जाने वाला पैसा काफी कम होता है, राज्य लगातार दबाव बना रहे हैं केंद्र पर कि उनको दिया जाने वाला पैसा ज्यादा होना चाहिए, उनका रेशियो ज्यादा हो। अभी जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं और अभी जो वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं वाईपी रेड्डी, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कोष देने का रिकमेंड भी किया है, तो सजेशन ये है कि उन्हें अधिक पैसा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और जब राज्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से राज्य विकास कर सकेंगे। तो कहीं ऐसा न हो, इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि कहीं ऐसा न हो कि ये नीति आयोग भी एक तरह से योजना आयोग का ही डुप्लीकेट बन जाए या उसकी कार्बन कॉपी बन जाए, तो ये एक सतर्कता है। तो चूंकि नीति आयोग बना है, नया आयोग है, एक फेडरल स्ट्रक्चर में आपको उसकी उपयोगिता देखनी है और पहला ही साल है, तो सिविल सर्विस के लिहाज से हम अभी नीति आयोग से जुड़े हुए मुद्दों को इम्पोर्टेंट मुद्दा मान सकते हैं। मित्रों, एक हिंदी का जो बिजनेस स्टैंडर्ड है उसका एक आर्टिकल है, खासकर जो कीटनाशक दवाइयां होती हैं उससे खास जो जिन चीजों पर छिड़का जाता है वो जहरीले हो जाते हैं, उससे हेल्थ की बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके विकल्प क्या हो सकते हैं, इसको लेकर के एक आर्टिकल है, इसको आप देख लेंगे, बहुत ही सामान्य सा आर्टिकल है, इसे आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अखबारों की क्लिपिंग्स के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। तो सबसे पहले मैं सभी अपने उन मित्रों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ईमेल लिखे हैं। इसमें मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा, वो हैं ज्ञान प्रकाश सिंह, अनिरुद्ध सिंह भोपाल से, आलोक त्रिपाठी इलाहाबाद से, विपिन कुमार यादव भागलपुर से और मयंक शर्मा लखनऊ से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने जो अक्टूबर नवंबर की क्लासेस हैं उसके बारे में जानना चाहा है, डिटेल्स में जानना चाहा है। देखिए जो afeis.com है इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको क्लासेस में जाने पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बिल्कुल सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाता है, आपको उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो उसी में एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप उस मोबाइल नंबर पर फोन करके बाकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मैं अपने आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।